लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और त्रिपुरा के चुनावी रण में उतरेंगे। इसके पहले मंगलवार को बिहार की गया में उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभालते हुए विपक्ष की आलोचना की। संविधान के प्रति आस्था जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे।
पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की टीएमसी सरकार विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का काम करती है।
हम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार उसमें भी रोड़े अटकाती है। मोदी बंगाल में पहले एम्स की शुरुआत कराता है तो यहां की सरकार कहती है कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को भी ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम आवास के घर गरीबों की जगह गलत लोगों को बांटे जा रहे हैं।
बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री के बयानों की आलोचना की है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अपने 10 साल का हिसाब देना चाहिए।
आप 10 साल प्रधानमंत्री हैं, आपने क्या किया ये बताओ, कौन उस समय था, नहीं था, क्या था, सवाल आपसे जनता करेगी। संविधान बना तो इतने लोग सनातनी थे, ये क्या मतलब है भाई, आपका क्या भला इससे। गरीबी पे क्यों नहीं बोल रहे, क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ गंगा सफाई अभियान का, इनको और कुछ तो आता नहीं है। केवल जो है हिंदू मुसलमान की बात करना है कि बिहार का भला इन बातों पर नहीं होगा, काम की बातों पर होगा।
कांग्रेस पार्टी के प्रचार में भी तेजी आई है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में पार्टी का प्रचार किया। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा,
इंडिया is like a bouquet of flowers, different languages, different religions, different traditions, different histories, all of them coming together, supporting each other and making each other more beautiful. It is a pity that the Prime Minister of India does not understand India's nature. He does not understand that our multiple languages, multiple traditions, multiple religions are our biggest strength. That from these multiple perspectives comes a beautiful, powerful perspective. It is difficult for him to see this because his only quest is to be in power at all costs.
लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा आक्रामक प्रचार का सहारा ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरी बार मोदी सरकार के फायदे गिनाते हुए कहा,
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार को राज्य के कांकेर जिले में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसमें कुछ बड़े इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल हैं। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। मुठभेड़ के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कांकेर के SP इंदिरा कल्याण इले सेला कहते हैं,
मार इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। इसमें 2 जवान घायल, 1 जवान घायल हुआ है DRG का और 1 इंस्पेक्टर BSF का, उनको पैर में गोली लगी है।
भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली है। हालांकि अदालत ने उनकी माफी अभी स्वीकार नहीं की है। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने अपने उत्पाद का प्रचार करते हुए एलोपैथी चिकित्सा के बारे में कई भ्रामक बातें कही थी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की, जिसने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। IMF ने साल 2024-25 के लिए भारत की GDP में वृद्धि दर को 6.5 की बजाय 6.8 कर दिया है। IMF का मानना है कि घरेलू मांग में मजबूती के चलते ऐसा हो सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।